نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصلاح القلوب کے سلسلے میں ہم بہت ہی خوبصورت ٹاپک کریں گے جو میرے گمان کے مطابق آپ میں سے اکثر نے اس کا نام بھی نہیں کبھی سنا, اور اگر آپ خود بک سے پہلے نہ پڑھ چکے ہو تو آپ کہیں گے یہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ ورا. ورا اور مشتبہات سے بچاؤ. کتنے لوگوں نے لفظ ورا سنا ہوا؟ پہلے ہاتھ کھڑا کریں. کسی نے نہیں سنا, حالانکہ میں نے تفسیر میں کئی دفعہ بولا ہے, لیکن یہ نہیں بتاؤ گا ہوتا کیا. تقویٰ کا آخری درجہ ورا ہے کہ جس میں گناہ کی چیزیں, نافرمانی کی چیزیں تو بندہ چھوڑتا ہی ہے, وہ چیزیں جو بندے کو شبہ تن بھی بری لگیں اس کو بھی چھوڑ دے, یعنی احتیاط اور پرہیزگاری کا اعلیٰ ترین درجہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا خوف بندے کے دل میں آ چکا ہو, اتنی خشیت آ چکی ہو, اس کی پکڑ کا اتنا خوف ہو کہ ڈر یہ لگے کہ صحیح کام بھی کرا تو پتہ نہیں غلطی نہ ہو, اس کو بھی چھوڑ دے. جیسے آپ دیکھیے کہ سیٹ بیلٹ باندھی بھی ہوگی نا, تو پولیس مین کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر ہاتھ جاتا ہے کہ بندی بھی ہے کہ نہیں. تو بعض دفعہ انسان شروع شروع کی چیزوں پہ ہی دین پہ جمتا ہے, لیکن جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ دن بدن اپنے آپ کو اور چمکاتا ہے. تو ورا دل کی وہ کیفیت ہے کہ دل کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے, نافرمانیوں سے دور کر دیتی ہے, حتیٰ کہ مکروہ اور شبہ والی چیزوں سے بھی بندہ بچ جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورا ایمان کے درخت کا انمول پھل ہے, اور ہر بندے کے بس میں ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر ورا آ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں قرار دیا, کیونکہ اس کے لیے نفس کو پورا لتاڑنا پڑتا ہے, نیچے سے نیچے ڈالنا پڑتا ہے. تو لہٰذا آئیے تھوڑی سی اس کی باتیں دیکھتے ہیں کہ ورا کی اہمیت کیا ہے. طاؤس کہتے ہیں کہ ایمان کی مثال درخت کی ہے, یہ تو سب جانتے ہیں نا. اس کی جڑ کیا ہے؟ کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کا تنا اور اس کے پتے فلاں فلاں شکل کے ہیں, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ تنا کیا ہے, بولیے, فرائض, فائیو پلرز آف اسلام, اور اس کا پھل یا صبر ورا ہے. بلا شبہ وہ درخت بے فیض ہے جو پھل نہ لائے, اور اس انسان میں کوئی بھلائی نہیں جو متقی و پرہیزگار اور متورع نہ ہو. متورع کہتے ہیں ورا والے کو. قاسم کہتے ہیں کہ ورا یعنی شبہ سے بھی بچنا دین کا عمود یا ستون ہے. آپ نے دیکھا جب بہت بڑے کمرے میں چھت ڈالی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ مڈل میں کچھ پلرز دے دیے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ دیواروں پہ تو بوجھ آ گیا ہے, لیکن چھت کا بیچ کا حصہ کہیں دب نہ جائے. یہ بیچ کا جو پلر ہے نا, یہ ورا ہے. بعض لوگ ساری پابندیاں دین کی قبول کرتے ہیں الحمدللہ, چاروں دیواریں تل کا حدود اللہ ہی مانتے ہیں, لا تقربوها اس کو بھی مانتے ہیں, پر ان کو ڈر کیا ہوتا ہے کہ جو دین کی چھت ہے نا, یہ کہیں بیچ میں سے کہیں سے نہ گرے. تو جگہ جگہ ورا کے نام کے ستون انہوں نے لگائے ہوتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورا اطاعت و فرما برداری کی بنیاد ہے. حارث کہتے ہیں اطاعت و بندگی کی اصل ورا اور پرہیزگاری ہے. قام جوئی کہتے ہیں دین کی اساس حرام سے بچنا اور پرہیزگاری ہے, اور ورا اور پرہیزگاری بندے کی شرافت کی دلیل ہے اور اصلاح حال کی دلیل. یعنی جس میں آپ اس درجے کا ورا دیکھیں نا تو اس کو شریف کہہ دیں, اور اس کے بارے میں مان لیجئے کہ وہ اپنے حال کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں اگر تم کسی شخص کے نماز روزے کو مت دیکھو, یعنی یہ تو بہت آسان ہے, اگر دیکھنا ہے تو اس کی گفتار و کردار, یعنی اس کی بات چیت, اس کے کریکٹر کو دیکھو, اس کی امانت داری اور عہد کی پاسداری کو دیکھو, اور اس کے ورع اور پرہیزگاری کی طرف نظر دوڑاؤ. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اسلاف انسیسٹرز ورع کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا کرتے تھے, جیسے کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, اردو, انگلش ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا. آپ سوچیں آپ کا بچہ اسکول گیا مونٹیسری میں, ٹیچر نے کہا بکس لائیں, چلے پریپ ون میں, بک ون میں گئے, فرسٹ گریڈ میں گئے, جو بکس خریدی اس میں سے ایک بک خریدی آپ نے ورا کے نام پہ, تو وہ بچہ کیسا بنے گا بڑا ہو کے؟ جس نے شروع سے اتنا بڑا معیار دیکھا تقویٰ کا क्या वो फिर अल्लाह से डरेगा? हम ऐसे वक्त में क्या देते हैं? राइम्स, स्टोरियाँ, ट्विंकल ट्विंकल, हम्प्टी डम्प्टी, और बच्चे बच्चे ही बन जाते हैं। तो बचपन से ये कोर्स पढ़ाने की ज़रूरत है। इमाम दहाक कहते हैं, हमारी आदत ये थी कि हम वरा के अलावा और किसी चीज़ की तालीमो ताल्लुम की तरफ जोर ही नहीं दिया करते थे। आज किस चीज़ का जोर है बाय द वे? फिक का, फिकी बातें, फिकी मसाइल, फिकी बहसें। अक्सर लोगों से मैं सवाल करती हूँ, आप ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आपको क्या मिलता है? फिकी बातें मिलती हैं। सिर्फ कुरान की तफसीर वो नॉलेज है जो दिल को नरम करता है, और बंदा अपने आप को छोटा पाता है दिन ब दिन। आप कहते हैं ना, हम 4-5 साल से ये कुरान तफसीर, कुरान कोर्सेज कर रहे हैं, अब छोड़े ज़रा यूनिवर्सिटियों में दाखिले लेते हैं। अल्लाह की पनाह, अगर दिल में तकवा है तो फिर तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप इतनी उलझनों में पड़ जाएंगे। मैं ऐसी कई साथियों को जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स तक कर लिए उन्होंने ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज से जिनके नाम लोगों के जहनों पे होते हैं, लेकिन अमल में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं। जो कुरान पढ़ने के दौरान चेंज आई थी, आज भी वही है। ना उससे पर्दा भरा, ना उससे ज़्यादा कोई बातचीत का अंदाज़ भरा होगा। दिल की हालत अल्लाह जानता है, नफलों को मैं नहीं जानती किसी के, लेकिन ज़ाहरी हाल हालात में कोई चेंज नहीं आई। वो मास्टर्स कर चुके हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से। तो याद रखिए, ये वरा तो किसी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जा सकता। ये तो आप जब दिल में लेकर बैठते हैं ना कुरान पढ़ते वक्त, कि मैंने अपने लिए दी बेस्ट का क्राइटेरिया रखना है, तो फिर आपको अल्लाह बदलता है। तो लिख ले कि वरा क्या है? दी बेस्ट, आई वॉन्ट टू बी दी बेस्ट, नो कॉम्प्रोमाइज एट क्वालिटी। ऐसे नहीं करना इधर का मामला उधर, उधर का इधर, नहीं, चलिए उसको लेकर जहां तक लेके जा सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमने अपने साथियों और दोस्तों को इस हाल में भी पाया कि वो वरा की तालीम और ताल्लुम के अलावा और किसी चीज की तरफ नजर नहीं उठाकर देखते थे। बाय द वे, हम ये सारा कोर्स कुरान के क्यों करते हैं? यही चाहते हैं ना कि हम तत्की बन जाए, लअल्लकुम तत्तकून। तो तत्तकून का अगला लफ्ज़ क्या है? लअल्लकुम मुतवर्राउन। तो फिर जो जितना बड़ा तकवा वरा को हासिल कर लेगा, वो है टॉप 10, वो है बढ़े हुए लोगों में। हर क्लास के वही लोग टॉप 10 हैं जो वाकई तकवा और वरा में आगे बढ़ गए। लेकिन इस पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक को दिल खोल के पढ़िएगा, फिर आपकी गलत फहमियाँ निकलेंगी, क्योंकि इसी में गलूब ने लोगों को बाज़ दफ़ा बेअमल भी कर दिया। तो आइए थोड़ा सा इसका डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं। वरा वरा आइन से है, इससे मुराद तखरजा यानी गुनाहों से बचना और नाफरमानी से इज्तनाब करना। वरा यरु विरा अन वर अतुन व तौरियु अन कजा, मुराद के हराम और नाजायज चीज़ों से बचाया, दूर रहा, यानी इसमें बचने का मानी आपको दिखेगा हर जगह। वरा आता ही उस मानी में है, यानी हराम और नाजायज चीज़ों से बचना और मुबाह और हलाल चीज़ों में इन चीज़ों से परहेज के लिए बतौर इस्तारा, जिनसे मरुवत पर जद पड़ती हो। ये नोट कीजिए, आपको समझ नहीं आएगा जुमला। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आती हैं कि ये करोगे तो ये सज़ा है, ठीक है? जैसे मिसाल है, सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो ये है वो है। लेकिन आप अपनी गाड़ी में माल्टों के छिलके फेंक दें तो कोई सज़ा है इसकी? आपकी गाड़ी में गंद पड़ा हो, बू आ रही हो, तो पुलिस आपको पकड़ सकती है? लेकिन ये मरुवत के खिलाफ है, ये मतलब है इधर। कुछ गुनाहों पे कोई पकड़ नहीं होती, लेकिन वो मरुवत के भी खिलाफ होते हैं ना, तो वरा है वो चीज़ कि बंदा उन चीज़ों को भी छोड़ दे जिस पे ना अल्लाह ने कोई फतवा दिया, ना जहन्नुम की वाइद दी, लेकिन बंदे को शर्म आती है कि मैं ये काम करूं? नो, इट्स नॉट माई स्टेटस। वरा की तारीफ क्या है? फुदैल बिन इयास कहते हैं, हराम चीज़ों से रुकने का नाम वरा है। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, हर शुबे में डालने वाली चीज़ से दूरी और ला यानी बातों से परहेज और फजूल गोई से इज्तनाब। ये आप अलग से लिखिएगा क्योंकि इसको मिस ना कर दें हम। शुबे वाली चीज़ों से, हर शुबे वाली चीज़ से बच जाए। दामा यूरीबिक इलामा ला यूरीबिक, एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है आप कह लें इस्लाम में। हर उस चीज़ को छोड़ दो जो शक पैदा करे और उसको ले लो जो शक से पाक हो। इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं, वरा के लिए आखिरत में जिस चीज़ से नुकसान का खतरा हो, इसको दुनिया में आंख बंद करके छोड़ देना वरा कहलाता है। कितना अकलमंद होता है मोमिन। अबू बकर बिन मोहम्मद बिन अली कहते हैं, अदब व शाइस्तगी पर हमेशगी, नोट करें, गुड मैनर्स, और दवाम और नफ्स की निगेबानी का नंबर है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, ये सब लफ्ज़ अलग लिस्ट की तौर पे इसी बुक के साइड बॉर्डर में लिख लें। अभी तक जो भी चीज़ें आपके सामने आई हैं, नंबर एक, हराम चीज़ों से बचना, शुबे में डालने वाली चीज़ों से दूरी, बेकार बातों से परहेज़, फजूल गोई से बचना, और आखिरत में नुकसान देने वाली चीज़ों से रुकना आंखें बंद कर, और अच्छे अदब हमेशा, ये नहीं कि ड्राइंग रूम मैनर्स थोड़ी देर के लिए अच्छे हो गए और बाद में ख़राब, और फिर नफ्स की निगेबानी, ये भी चीज़ आ गई, कितने हो गई लिस्ट बनाते जाएं। फिर इमाम ज़ुरकानी कहते हैं, हरामकारी ऐसी चीज़ें जिसके अंजाम देना मोमिन की शान मरव्वत के ख़िलाफ़ हो, इसमें मुब्तला हो जाने के खदशे से इस चीज़ की अंजाम दही तर्क कर देना जिसके करने में कोई मज़ायका भी नहीं है, वरा कहलाता है। मसा आप देखिए शराब खाना, अब शराब खाना है और उसमें कोई जाता है तो शराब पीता है ना, गुनाहगार होगा। मिसाल दे रही हूँ आपको, बिजली का काम करता है, लेट्स सी ये लाइट्स ठीक करता है, इलेक्ट्रिशियन है। अब उसके पास एक काम आता है और वो शराब खाने की लाइट्स को ठीक करना है, वो तो लाइट्स ठीक करने गया ना, ना उसने शराब छुई ना देखी, लेकिन वो कहता है कोई बंदा मेरी गाड़ी शराब खाने के बाहर देखेगा, उसको क्या पता मैं क्या करने गया हूँ। नहीं, मेरी मरव्वत के ख़िलाफ़ है कि मैं शराब खाने के करीब से गुजरूँ, भाई मुझे ये काम नहीं करना, और मेरी इस ठीक हुई लाइट के रोशनी में लोग शराब पियेंगे, मुझे ये गवारा नहीं होता, ये है मेरा। अब आपको समझ आएगा कि कुछ लोग इतने केयरफुल क्यों होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, वरा अंदर की आंख के खुलने का नाम है। लोगों को वो चीज़ें दिखती कोई नहीं, खा पी के हजम कर चुके होते, कहते अच्छा ये भी बुरा था, मैं तो याद ही नहीं था, इनको कैसे ये पता चल गया, अच्छा म्यूजिक भी था इधर, हम तो ऐसे ही बैठ गए थे, हमने तो गौर भी नहीं किया। तो मांगे हम सब वरा, वरा मांगेंगे ना तो तकवा भी मिल गया तो बड़ी बात है, हम तकवा भी मांगते हैं तो वो भी पूरा कोई नहीं, कटा फटा तकवा छेद वाला, तो फिर जो हाल होता है वो आज उम्मत का हाल हम सब देख रहे हैं। कहते हैं इसमें मुब्तला होने के खदशे से इस चीज की अंजामदही छोड़ देना जिसके करने में मजायका नहीं, दूसरे लफ्ज़ों में मुबाह चीज़ों को हराम में मुब्तला होने के खौफ से छोड़ना। मुबाह के जायज़, खाना जायज़ है, पीना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं सवाब नहीं, लेकिन इसलिए छोड़ देना कि कहीं हराम में ना पड़ जाऊँ, परहेजगारों और मतबर्रीन का काम है। जुर्जानी कहते हैं, इस खौफ के पेश नज़र शुबहात से इज्तनाब करना कि कहीं इनके इर्तकाब मुहर्रमात के मर्तकब होने का बायस ना बने, वही बात है, शुबे वाली चीज़ों को भी छोड़ देना हराम के खदशे में। और बाज़ कहते हैं, शकूक व शुबात के जाल में फंसने के खदशे से बतौर एहतियात मशकूक चीज़ों को तर्क करके वाज़े और रोशन राह को इख्तियार करना वरा कहलाता है। किसी तारीफ करने वाले की ये भी तारीफ है, हर उस चीज़ से मुख्तात रवैया अख्तियार करना जिससे खतरा लाहक हो। वरा की गर्ज़ो ग़ायत इखलास की तहारत के आईने में शिर्क खफी के शुबे को बारीक ऐनक लगा कर देखना और इसके बारे में छानबीन करना वरा कहलाता है। समझ आया आपको? बारीक सी ऐनक लगा लें, वो सुंडियाँ देखनी होती हैं ना, औरतें कहती हैं वो मेरी ग्लासेस दो ज़रा, मैं चावल साफ़ कर लूँ, कोई इसमें है तो नहीं, दाल में करोड़ा तो नहीं, तो एक एक दाना चुनते हैं ना, बस वो बारीक ऐनक लगा के हलाल और हराम को देख लीजिए। सारी बातें अगर आप जमा करें ना, कितने बने, आपने नंबर काउंट किया टोटल कितनी चीज़ें बनी हैं? 10-12 तो बन गई है, लेकिन इन सारे अकवाल को जमा करें ना तो चार मरतबे बनते हैं, मरतबे से मुराद लेवल्स। पहला मरतबा के इंसाफ परवरों का वरा, यानी सबसे पहला क्या है, इंसाफ का तकाजा कि हराम को सिरे से तर्क कर दे, ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि हराम में तो बिल्कुल नहीं पड़ना। इससे ऊपर सालेहीन और अल्लाह वालों का वरा क्या है, इससे मुराद इन चीज़ों से बिल्कुल इज्तनाब जिसमें ज़र्रा बराबर भी हुरमत का एहतमाल हो, ज़रा कम हो गया ना कि आप ज़रा सी भी हुरमत का खदशा उसको भी छोड़ दो, ये सालेहीन का वरा। तीसरे दर्जे पे मुत्तकीन का वरा, हरामकारी या ऐसी चीज़ जिसकी अंजाम दही मोमिन की शान के ख़िलाफ़ हो, इसमें मुब्तला होने के डर से उस चीज़ की अंजाम दही तर्क कर देना जिसके करने में कोई हरज नहीं, मुत्तकीन की शान है, यानी मुबाह चीज़ों को हराम में मुब्तला होने के खौफ से तर्क करना, ये परहेजगारों और मुत्तकीन का वरा है। ठीक है, जितना कोई परहेजगार होगा वो मुबाह कामों को भी हराम के खौफ से छोड़ देगा। और चौथा दर्जा होता है सिद्दीकीन का वरा, सबसे ऊपर, बंदा उस चीज से किनारा कशी करे जिसकी इंजामदही में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको खतरा हो के हो सकता है कि इसकी इंजामदही में रियाकारी का पहलू हो। सुभान अल्लाह, देखिए सबसे ऊपर है कि बंदा रियाकारी के डर से किसी ऐसे काम को छोड़ दे, या ये काम खालिस्तन सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं, या इसमें शिरकिया मेजिश है, या इससे कराहत की बुआ आ रही हो, या ये कि वो काम मासियत का पेश खेमा हो और इससे दूरी और इज्तनाब सिद्दीकीन का बुलंदोबाला। तो ये जो सबसे आखिरी है ना, ये सबसे ऊंचा दर्जा है, क्योंकि ये वरा के चार मरतबे हैं ना, किसी ना किसी जगह आप देखेंगे तो सिद्दीकियत के मुकाम पे ही है वो बंदा कि जो बिल्कुल ही उन चीज़ों को छोड़ दे कि जिससे शक पड़ जाए कि शिर्क होगा, लोगों का दिखावा देखना और लोगों के अंदर बड़ा बनना होगा। बाय द वे, आज के दौर में इतना मशहूर क्यों नहीं है ये लफ्ज़? लोग जिसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते थे, वजह यह कि अभी पीछे की मंजिलें ही तय नहीं हुई, अभी तकवा भी नहीं है तो बरा कहाँ से आएगा। आज तो हाल यह कि हराम को भी हलाल बनाने का गम है। तो याद रखिए कि इस्लाम में इसका क्या मुकाम है। सवाल हो सकता है वरा क्या है? वाजिब है, और इसकी फजीलत बहुत बड़ी है। चंद आयतें बस नोट कर लीजिए कुरान की जहां आपको इसका इशारा मिलता है। तौहा 113, वकज़ालिक अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन वसर्रफ़ना फ़ीही मिनल वईद लअल्लहुम यत्तकून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा। इसी तरह हमने इसे अरबी कुरान बनाकर नाजिल किया और इसमें डराने की बातें फेर फेर कर बयान की, शायद कि वो डर जाएं या फिर इनके लिए कोई नसीहत पैदा कर दे। तो मुफस्सरीन कहते हैं ये जो लफ्ज़ है ना ज़िक्रा, ये वरा है, यानी कुरान लोगों के अंदर ऐसा जोश पैदा करता है, अल्लाह का ऐसा खौफ पैदा कर देता है कि वो डरने लगते हैं, वरा की कैफियत पैदा हो जाती है। तो लिहाजा मकसद बता दिया कुरान के नज़ूल का कि लोग अपना दामन भर लें वरा की दौलत से। इसी तरह सूरत तौहा 138 में आता है, अफलम यहदी लहुम कमा खलकना क़ब्लहुम मिनल कुरूनि यमशूना फ़ी मसाकिनिहिम। फिर के इस बात ने इनकी रहनुमाई नहीं की कि हमने इनसे पहले कितने जमानों के लोग हलाक कर दिए जो इनके रहने की जगहों में चलते फिरते हैं, बेशक इसमें अक़ल वालों के लिए कई निशानियां हैं। तो मुफस्सरीन कहते हैं जिसमें इमाम कतादा है कि उलिन नुहा कौन लोग हैं? वरा वाले। अक़ल होती है ना, नुहा कहते हैं अक़ल को, क्योंकि अक़ल हमें रोकती है बहुत से कामों को करने से। तो कहते हैं कि परहेजगार और मुत्तकीन लोग जो बड़ी मुहतात ज़िंदगी बसर करते हैं, वो फिर इशारे भी समझ जाते हैं। कुछ को तो मुंह से बोल के भी बताया जाए तो नहीं रुकते, और कुछ इशारा समझ के रुक जाते हैं। और ये दिल का अमल है, याद रखिए, दिल साफ होगा, दिल के अंदर रोशनी होगी ना, तो ये सब कुछ दिखेगा। और जब वरा आता है ना, तो इसमें फिर इंसान दिन ब दिन अच्छे से अच्छा होता जाता है। नबी सल्लम ने वरा के लिए क्या कहा? अबू हुरैरा की रिवायत है, आपने फरमाया अबू हुरैरा परहेजकारी को अपना शौहर बना लो, लोगों में आबिदो जाहिद शुमार होने लगोगे। यानी तारीफ फरमाई आपने इस चीज की। साथ भी नबी वकास कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन इस्लाम में परहेजगारी और तकवा का मर्तबा अफजल तरीन दर्जे का है। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान से एक रिवायत, अमर बिन कैस मुल्लाई से रिवायत, फरमाया अल्लाह के नबी का कौल है तुम्हारे दीन की कुंजी या इसकी बुनियाद वरा और परहेजगारी है। और सच है ना, देखिए जब अल्लाह का खौफ और तकवा और वरा खत्म हो गया तो जो मर्जी कर लें आप, किसका डर है फिर? हजरत आयशा कहती हैं दुनिया की तमाम चीज़ों में से कोई चीज़ नबी के दिल को भाने वाली ना थी, यानी आप दुनिया की किसी चीज़ की तरफ नहीं रीछते थे, ना ही दुनिया की किसी चीज़ से अल्लाह के नबी मरूब होकर इसके गर्विदा बने। अगर कोई चीज़ नबी के नज़दीक काबिले रश्क थी तो वो मुतवर्र और मुत्तकी और परहेजगार शख्स का वजूद था। आप और मैं खुद से पूछें, हम कितनी चीज़ों से मरूब हैं दुनिया की? हमारा दिल किधर किधर बार बार भागता है। नबी ना घर से, ना माल से, ना दौलत से, ना दुनिया की चीज़ों से खुश होते थे, लेकिन कोई नेक शख्स उनके पास आ जाता था ना तो उस पर रश करते थे, कहते थे ये है असल बात। इसी तरह सलफ सालेहीन का हाल था। हजरत उमर का कौल बहुत खूबसूरत है, रात के आखिरी पहर मक्खी की तरह भिन बनाहट का नाम दीन नहीं है। यानी रातों को कुरान की तिलावत करना ही सिर्फ दीन नहीं है, बल्कि परहेजगारी और तकवा वरा का नाम दीन है। यानी अमली मैदान में तुम अल्लाह से कितना डरते हो। और हसन कहते हैं अफजल तरीन इबादत तफक्कुर व तदब्बुर, اور تقوی و پرہیزگاری ہے، اور ایک کالنگ کا ورا ہی اصل حکمت اور دانائی ہے. اس کو تو ضرور ہائی لائٹ کریں. یہ جو ہمیں اکثر گلہ ہوتا ہے نا اپنے آپ سے، ہمیں کیوں نہیں صحیح فیصلے کرنے آتے، ہمیں کیوں نہیں سوچتا، تو اس کی وجہ ورا کی کمی ہے. ایک شعر بھی آپ نے سنا ہوگا نا، کہ جو دیکھا ہے جو میں نے وہ اوروں کو دکھلا دے. یہ جو دیکھا ہے میں نے ہے نا، یہ ورا ہے. ورا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دیتا ہے. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کی دولت بڑی قیمتی ہے، ملتی تھوڑے لوگوں کو ہے، لیکن جب ملتی ہے تو وہ دنیا میں بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، کہ جن پہ لوگ پھر رش کریں، کہ جو علم و فضل کے موتی لٹائیں اور مال و دولت کو اللہ کے راستے میں لٹا کر خوشیاں مناتے ہیں. تو ورا کی کیفیت جو ہوتی ہے نا، یہ حکمت دیتی ہے. سید بن مصیب کہتے ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا اور اس کے حکم اور نواحی میں تدبر و تفکر کرنے کا نام عبادت ہے. یعنی ویری کیئرفل پرسن. اچھا، آپ نے انسانوں میں بھی دیکھا ہوگا، آپ کے اپنے گھروں میں بھی مختلف طبیعتوں کے لوگ ہوں گے نا، کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت محتاط ہوتے ہیں، کچھ اٹس اوکے چل چلاؤ. کسی نے سفر پہ جانا ہے، وزن نکال رہے، ڈھانپ رہے، کر رہے، کتنا ہو گیا، کہاں ہوا، انچوں منچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، کچھ کیئر لیس ہوتے ہیں. اب یہ دنیاوی معاملے ہیں نا، نہ گناہ نہ ثواب. دین کے معاملے میں ایکسیلنسی کے درجے کا نام ورا ہے. مترف کہتے ہیں کہ تمہارے دین میں افضل ترین چیز ورا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارا دو آدمیوں سے آمنا سامنا ہو جائے، ایک تو بکثرت نماز ادا کرنے اور روزے رکھنے والا اور صدقہ خیرات کرنے والا ہو، دوسرا کچھ نہ کرتا ہو، کیا مراد؟ نفل، یاد رکھے، فرض نہیں، ادھر لکھ لیں، پتہ چلے کوئی بھی نماز نہ پڑھے. دوسرا کچھ نہ کرتا ہو مگر دونوں میں مرتبے کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہو. لوگوں نے پوچھا، آخر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے دوسرا اللہ کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کرنے والا اور اللہ کی حرام کردہ اور ناجائز چیزوں سے رکنے والا ہونے کی وجہ سے افضلیت و برتری کے مقام پر فائز ہوگا. خدا کے لیے اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ نماز روزہ چھوڑ دیں بس ورا آ جائے. آئے گا ہی نہیں، آتا ہی ادھر سے، آتا ہی نماز روزے سے. یہاں مراد نفل ہے. یعنی کوئی شخص نفلی طور پہ اللہ کے ساتھ نہ بھی اتنا جڑا ہو، لیکن اپنی عملی زندگی میں جب اس میں اتنی احتیاط ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی نظروں میں وہ بہت اچھا ہوگا. اور یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں، افضل ترین عمل تقوی اور پرہیزگاری اور ورع اور اختیار ہے. آپ کو بھی لگتا ہے نا ایسے ہی ہے، اینڈ ریزلٹ ہے نا. آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے بچوں میں بھی یہی چاہیں گی. آپ بچے کو کنیٹ کالج بھیجیں، اس کو بیکن ہاؤس بھیجیں، آپ کو کیا لگے؟ آپ یہ دیکھیں گی اینڈ پہ میرے بچے میں خوبیاں کہاں زیادہ آتی ہیں. تو ورع جو ہے نا، آپ اس کو بل سوچیں، بٹر ہے، مکھن ہے، سارا دین چھاچ ہے، تو اس کے اوپر جو بلورنے کے بعد بٹر آتا ہے نا، مکھن، یہ ورا ہے. کسی اسکول اور مدرسے اور انسٹیٹیوٹ اور ادارے اور یونیورسٹی اور مسجد میں جا کے پڑھ لیں. کوئی آپ کا استاد ہو، الف بے سے تے جیم، کوئی ان کا نام اے بی سی ڈی سے شروع ہو، جو بھی ہو، یہ چیک کر لیں کس کی بات کے بعد ورا کی کیفیت آئی، اس کو چوز کر لیں. مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، نو پرابلم. تو مجھے خوشی ہوگی نا کہ آپ واقعی اب اعلیٰ درجوں پہ پہنچ گئے، تو میں کہوں گی آپ کو میرے سے اچھا استاد مل گیا. تو علم ہی وہ ہے جو دل میں اللہ کا خوف بھر دے. اور یہ آتا کہاں ہے؟ تفقہ فی الدین سے. یہ چلے کاٹنے سے نہیں آتا، گھر بیٹھ کے سوچوں اچھا کیسے چھوڑوں، کھانا چھوڑ دوں، پینا چھوڑ دوں، گانے چھوڑ دوں، اچھے کپڑے سب پھینک دوں. آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی، بیکار ہو کے بیٹھیں گے نا، تو پھر ہاتھ پاؤں بھی نہیں کھلتے. کام کرتے ہیں تو ہاتھ پاؤں کھلتے ہیں نا. اسی طرح یہ تفقہ فی الدین سے بڑھتا ہے. اس کو لکھ لے، جتنا دین کے اندر تفقہ، غور و فکر ہوتا جائے گا نا، اتنا آپ کا انشاءاللہ بیسٹ کمبینیشن بنتا جائے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں فقہائے امت، ٹھیک ہے نا، فقیہ، اور کچھ ہوتے ہیں عوام الناس. ان کے ورا میں فرق ہوگا. عوام کے ورا کا دائرہ خود ان کی ذات تک محدود ہوتا ہے. ان کی پرہیزگاری کے فائدے کے نفع مند اثرات خود ان کی ذات سے آگے نہیں جاتے. ان کے علاوہ لوگوں پر ان کے اثر کا کوئی اتنا شبہ نہیں ہوتا. اسی لیے عرب شاعر کہتے ہیں، یعنی ایک متقی و پرہیزگار فقی شیطان پر ہزار عابدوں اور زاہدوں سے بھاری ہے. یعنی شیطان عبادت کرنے والے اور زہد کرنے والوں کو جلدی پکڑ لیتا، لیکن علم والے پہ اس کا زور نہیں چلتا. اسی لیے آپ آج سمجھ جائیں کہ علم کا راستہ مشکل کرتا ہے شیطان، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے بعد ورا ملتا ہے. اسی لیے علماء امت نے قاضی وقت، اب آپ دیکھیے مسلم قاضی کون ہو، جج یا لائرز کے لیول پہ کون پہنچے؟ آپ کہتے ہیں جو 10 سال پڑھے، जिसको खूब अच्छे लॉज याद हो, नहीं, ये कहते हैं कि किसी को अगर काजी बनाना है ना, यानी जज बनाना है, तो उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन देखो वो क्या है, वरा, क्योंकि उसके पास तो हर वक्त फैसले होने हैं, एक तरफ दौलत और माल होगा, दूसरी तरफ हक हो सकता है। तो अगर काजी खाइन हो जाते हैं ना खियानतों वाले, तो फिर वो लोगों के माल लेकर गलत फैसले कर देते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि बस हमारे दिलों को भी इसी पे जमा दे। वरा की हकीकत क्या है, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं, ये आपके लिए बाद में नुकसान होगा। तो वरा की हकीकत क्या है कि शुबहात से किनारा कशी ये लाजमी है। नुमान बिन बशीर कहते हैं कि अल्लाह के नबी को मैंने कहते हुए अपने कानों से सुना, हलाल वाज़े है और हराम भी वाज़े है, अल हलाल बैजिन वल हराम बैजिन, और इन दोनों के दरमियान मशकूक चीज़ें मौजूद हैं, शक डालने वाली, जो अक्सर व बेशतर लोगों के इल्म से मख्फी हैं, जिसे वो नहीं जानते। बस वो शख्स शुबहात से दामन बचाकर जो निकल गया, वो अपनी इज्जत और आबरू को तोहमत से बचा लेगा। जो शख्स शक और शुबे में डाल देने वाली चीज़ों में फंस गया, उसकी मिसाल उस चरवाहे की है जो किसी की चार दीवारी के करीब बकरी चराए, तो खदशा है कि इसकी बकरियां चरागाह की हदूद से तजावुज़ करके इस शख्स की चरागाह में दाखिल ना हो जाएं। और खूब कान खोल कर सुन लो, हर बादशाह की एक हरम सरा होती है, क्या उसकी सल्तनत, और अल्लाह की सरजमीन में हरीम यानी इसकी हराम करदा चीज़ें हैं। और ये बात भी जहन नशीन कर लो कि जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर इसकी इसलाह हो गई तो गोया के पूरे जिस्म की इसलाह हो गई, और अगर इसकी दुरुस्तगी ना हुई तो समझो पूरे जिस्म की शामत आ गई, और वो खून का लोथड़ा दिल है जिसकी इसलाह की कोशिशें हम कर रहे हैं। सच है ना? आप इस पूरी बात से क्या समझे? मैं इसको आपको दुनियावी एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। गाड़ी में एक स्पीड लिमिट होती है, 70, 80। मिसाल है ये हाईवे E6 है, नीचे इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, मिसाल दे दे कोई भी, 90 है, चले हम 90 पे आ जाते हैं। अब आप क्या कहते हैं कि 90 तो है ही है ना, तो 89 तक तो मैं जा ही सकती हूँ ना। होगा क्या, आप 89 पे जाएंगे ना, आपका ज़रा सा हाथ अटकेगा, आप 90 बंद कर चुके होंगे, और अगर इतना सेंसिटिव इनका सिस्टम होगा वो आपको फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा। जबकि आप कहते हैं नहीं 90 है, दैट मीन मेरे जहन में मैक्सिमम 80 है, 80 पे जाएंगे ना, 78 भी हो सकता और 82 भी होगा, इट्स फाइन, यू आर सिक्योर। वो कहते हैं ना, ये किनारों पे खेलने वाले डूब जाएंगे तो क्या करोगे, हमेशा ट्रेसपासर जो होते हैं ना वो गिरते हैं। तो वरा क्या है कि आप उस हराम चीज़ के पास जाए ना। प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल्स देखेंगे इंशाल्लाह हम कल, और भी आज देखिए, शराब, सूद, जिना, ये तीन बड़े बड़े नासूर हैं उम्मत के। कोई शक है किसी को इन तीनों के लफ्ज़ों की हुरमत पे? इसमें भी लोग इंडल्ज हो गए, वजह के मुशतबे कह कह के शुबा इस हो के। तो इंतहाई मुख्तात ज़िंदगी गुजारने का नाम वरा है। वाबिसा बिन माबत से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, गुनाह तो वो है जिसकी चुभन तुम दिल में महसूस करो और जिसकी टीस तुम्हारे कल्ब को पहुँचे, चाहे लोग तुमसे इसके बारे में पूछें या ना पूछें, या तुमको इसके बारे में इल्ज़ाम दें या ना दें। सच है कि नहीं? जितना गुनाह इंसान खुद अपना पहचानता है, कोई दूसरा तो उसका गुनाह नहीं पहचान सकता। हसन बिन अबी सनान कहते हैं, परहेजगारी यही है कि जिस चीज़ के बारे में तुम शक व शुबे में मुबतला हो जाओ, इसको बेछू छुरा तर्क कर दो। तो खुलासा क्या है? जेल में जाने से पहले ही अपने आप को रोक लो, किनारों पे ना रहो, दीन की लिमिट्स को पामाल ना करो। अब बस मुबाह चीज़ें होती हैं, मुबाह क्या लिख लें, जायज़, खाना पीना, बोलना सोना, जो हमारे दिन रात के काम है ना, असल में ये मुबाह हैं। लेकिन एहतियातन इससे दूरी करना कैसे, इसको हम पढ़ेंगे, इसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ें आप देखेंगे इंशाल्लाह। इमाम इब्ने तैमिया का एक कॉल है, जहाँ तक वरा परहेजगारी का ताल्लुक है, तो इस सिलसिले में इस चीज़ से किनारा कशी या दूरी इख्तियार की जाए जो नुकसानदेह हो। इस बारे में रिमात और शुबहात का शुमार होगा, क्योंकि यही चीज़ें नुकसान देने का जरिया होती हैं। बस जो शुबे से दामन बचाकर निकल गया, वो अपनी इज्जत और आबरू को तोहमत से बचा लेगा, और जो इसमें फंस गया, उसकी मिसाल उस चरवाहे की है जो किसी की चार दीवारी के करीब बकरी चराए, तो खतरा है कि बकरी उधर भी चली जाएगी। जहाँ तक मुबाहात और इन चीज़ों से परहेजगारी इख्तियार करने का मामला, जिनके इख्तियार करने में कोई नुकसान का शुबा नहीं, तो फिर मगर नफा अंदोजी का पहलू राज्य है। यानी आप देखिए कुछ चीजें हैं कि जिसमें फायदा मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन उसमें दाखिल होने से डर क्या होता है, नुकसान में चले जाएंगे, या कोई नुकसान देने वाली चीज के दूर होने की उम्मीद है, तो इस वक्त में वरा की अंजामदेही जहालत और जुल्म शुमार होगी। और ये चीज इन तीन किस्म के जिम्न में आती है जिसमें वरा जायज नहीं। नफा और नुकसान में बराबर का पहलू रखने वाली चीजें नंबर एक, या वो चीजें जिनमें नफा मंदी का पहलू राजे हो, या वो चीजें जिनमें खालिस नफा ही नफा पाया जाता हो, जैसे कि मुबाहात या मुस्तहिबात या वाजिबात से मुतल्लिक उमूर हैं, इनमें वरा इख्तियार करना गुमराही और बेराह रवी का शाख्साना है, बल्कि ऐन गुमराही और कजरवी है। जी कितों को समझ आया जुमला, पढ़ भी दिया मैंने, अभी इस पे बोली नहीं हूँ, कितनों को ये बात समझ आई है और मुझे समझाएं। अगर आप ये बुक खुद पढ़ रहे हो, कुछ कहते हैं ना हमने घर में पढ़ ली थी, छुट्टी की थी, उस दिन घर में पढ़ लेंगे, सारा समझ आता है। कुछ नहीं समझ आया, किसको आया है? आप खुद पढ़ रही होती घर बैठ के इसको, तो कैसे समझती? यानी किताबों में जो चीज़ लिखी होती है ना, वो पूरी बात नहीं समझाती। बाज़ दफ़ादा इल्म ज़्यादा नुकसानदेह होता है इल्म के ना होने से। आप देखिए कि कुछ चीज़ें जायज़ है, मतलब बोलना खाना पीना जायज़ है ना। आप कहते हैं आज के बाद बोलूंगी नहीं, आज के बाद खाऊंगी नहीं, आप सोच रहे हैं ना, बोलना ही नहीं, गूंगे हो जाना है। एक तो ना कम बोलना, बोलना ही नहीं, आज के बाद खाऊंगी नहीं तो मर जाएंगे ना, ये जायज़ नहीं है। इस हद का भड़ा हुआ वरा कि जिसमें कोई नुकसान नहीं बल्कि नफा ही है, आप एहतियात करें, केयर करें। मतलब कोई कहता है मैं बाहर गया तो हादसा हो ही जाना है, तो मैं बाहर जाती नहीं, या मैं जाता ही नहीं, तो वो फिर काम तो नहीं दुनिया का चलेगा ना। तो मुराद है कि इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर अपनी जाती जिम्मेदारियां और जिंदगी के जो काम है उससे जान नहीं छुड़ानी, ये मुराद है। बाकी बातें आगे समझ आएंगी इंशाल्लाह, आप आगे चलते जाएंगे। हर हलाल काम की अंजाम दही में परहेजकारी का अमल दखल नहीं, बल्कि यहाँ पर इस वजाहत का मकसद ये है, हर वो मुबाह किस्म की चीजें जिनके करने जिनकी अंजाम दे बुराई और मुनकर का पेश खैमा ना हो, यानी जो जायज चीजें जिससे आप किसी बुराई में नहीं पड़ रहे, मुनकर में नहीं आ रहे, या किसी गुमराही और बेरहरवी तक जाने का सबब नहीं बने, तो इसमें परहेजगारी इख्तियार करना वरा नहीं है, बल्कि ये तो इसके बरक कुछ और ही मामला है, इसको वरा शुमार नहीं किया जाएगा। वही बात है कि खुद साख्ता पाबंदियाँ ना लगाएं इस नाम पे। हर मुसलमान के लिए क्या लाजिम है कि अल्लाह की हदूद से करीब होने से होशियार हो, उसकी हदों के करीब ना जाए, क्योंकि सूरह बकरा 178 तिल का हदूदुल्लाह ही फला तकरबूहा, और सूरह बकरा 229 तिल का हदूदुल्लाह ही फला तातदूहा। एक जगह तल्लाक के ज़िमन में आई है ये बात, इंसानी मामलात में भी और दीनी मामलात में भी हदों के करीब ना जाइए। हदूद से मुराद यहाँ हलाल का आखिरी सिरा, इसको हाईलाइट करें, बड़ा खूबसूरत जुमला है। हदूद से मुराद हलाल का आखिरी सिरा और हराम की नुकेल या इसके शुरू का हिस्सा है। क्लियर है बात? देखिए ना दो रूम है, ये हलाल है तो वो हराम है, तो जो ये बॉर्डर है ये क्या, यहाँ हलाल की आखिरी हद है, तो उधर से हराम की नुकेल है, यानी स्टार्ट है, ये मुराद है। एक के तरफ से जब इधर जाएंगे तो दूसरी तरफ भी तो बात आगे जाएगी ना। इस बुनियाद पर मान ही होंगे कि तुम अल्लाह की जायज़ करदा चीज़ों में हदों से आगे ना जाओ और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों के करीब भी ना भटको। यहाँ वरा का किरदार नुमाया होकर सामने आता है, क्योंकि वरा यही तो है कि तुम हराम के करीब ना जाओ और अल्लाह ने जो चीज़ें मुबाह करार दी हैं इनके हदूद की पामाली मत करो। इसीलिए हलाल चीज़ों में हद से तजावज़ करना अजीम तरीन कबायर के इर्तकाब का पेश खैमा है, और हद से ज़्यादा हराम चीज़ों में मुलव्वस होने का ख़तरा है। सलफ़ सालफ़ीन क्या करते थे? वो बास मुबाहात को मुहर्रमात में मुलव्वस होने के ख़तरे से तर्क करते थे और इसकी तरफ नज़र भी नहीं उठाते थे। कैसे? ये ज़रा मिसालें पढ़ें, फिर इससे आपको और समझ आएगा। इब्ने उमर से रिवायत है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने और हराम के माबेन हलाल को सुतरा यानी आड़ बनाकर खड़ा कर लूँ और मुबाहात को हराम करार ना दूँ। कितना बैलेंस रवैया। कहते थे कि हलाल और हराम के जो बीच की जगह ना उधर एक सुतरा बना दूँ, ठीक है, यानी कि मैं अपनी बाउंड्रीज के अंदर हूँ। सुफियान बिन उयैना कहते हैं बंदा ईमान की गहराई तक पहुँच ही नहीं सकता जब तक अपने ऊपर हराम के माबेन हलाल की दीवार बनाकर बतौर रुकावट इसे रोक न बना ले, اور جب تک گناہوں اور اس کے مشابہ چیزوں کو ترک نہ کرے. مطلب یہی ہے, گناہوں میں پڑے بغیر, سوری, گناہوں میں پڑنے والا ورا میں نہیں آ سکتا. جس نے حرام کو چکھ لیا وہ تو خود ہی غلط چیز پہ چلا گیا. میمون کہتے ہیں اس آدمی کے لیے اس وقت تک حلال کی دستیابی ناممکن ہے جب تک وہ اپنے اور حرام کے درمیان حلال کی اوٹ بنا کر کھڑی نہ کر لے. وہی بات ہے, ڈسٹینس, پلیز کیپ ا ڈسٹینس. اب دیکھیے, اب اس کی 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں, چونکہ آگے آنی ہے, اس لیے میں ابھی یہاں نہیں چھیڑ رہی زیادہ. ابھی صرف اس کو ہضم کریں تھوڑا تھوڑا. کاروبار میں, جابس میں, آپ آج کے دور میں دیکھیں گے تو جو ورا کے ساتھ جیے گا نا, شاید وہ روٹیاں بھی نہ پکا کے کھلا سکے کسی کو, کہ اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں حرام کا کوئی پھاہا لگا ہی ہوتا. کچھ تو اپیرنٹلی حرام بزنس میں ہوں گے, ان کے کام میں تو اوپنلی ریبیلیسنس ہے, لیکن کچھ میں سائڈ سے, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. تو پھر جب ورا کی آنکھ ہوتی ہے تو ایسا بندہ تو پھر پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے نا. بس سلف کہتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی حقیقی مٹھاس اس وقت تک محسوس ہی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کا عادی نہ ہو جائے جن کے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں, محض اس خطرے کے تحت کہ کہیں وہ ان چیزوں کے چنگل میں نہ جا پھنسے کہ جن کو کرنا شرن غیر مناسب ہے. یعنی تب تک آپ کام کر ہی نہیں سکتے جب تک وہ بھی نہ چھوڑ دیں جس میں کوئی حرج نہیں, لیکن ڈر یہ کہ وہ آپ کو حرام کے قریب پہنچا دیں گے. سلف کہا کرتے تھے ہم حلال کے 70 دروازے اس خوف سے چھوڑ دیا کرتے کہ کہیں حرام کا ارتکاب نہ ہو جائے. اس کو ہائی لائٹ کریں, یعنی 70 حلال دروازے چھوڑ آتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ اس میں سے گزر کر ہم کسی ایک حرام میں پڑ جائیں گے. اسی طرح بعض مباحات, یعنی جائز کام ہے جن کو پرہیزگاری کے طور پر ترک کرنا بالکل جائز نہیں, کیونکہ اس سے کنارہ کشی اللہ کے نبی کی سنت نہیں, یعنی شادی نہ کرنا. یہ اب دیکھ لیا, آ گیا اس کا جواب جو پیچھے بات ہوئی تھی, شادی کوئی نہ کرے. اب ظاہر تو بہت تقویٰ, جی شادی کی تو پھر بیوی ہوگی, بچے ہوں گے, غیبتیں ہوں گی, یہ ہوگا. نہیں, نہیں کر سکتے آپ, یعنی یہ مباح ہے, جائز کام ہے, بٹ آپ کو کرنا ہے. اسی طرح آرام اور راحت کی خاطر سونا چھوڑ دینا, کھانے پینے سے پرہیز کرنا, یہ جس کو آپ رہبانیت کی قسم کی بھی کوئی چیز کہہ لے, یا اس طرح کے مباحات کو ترک کرنا ناجائز ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت شادی بیاہ سونا کھانا پینا بھی ہے, اور یہ حرکت سنت نبوی کے خلاف ہوگی. اسی طرح جائز کاموں کی بعض قسمیں وہ ہیں جو نیت صادقہ اور صالحہ کی بنیاد پر عبادات کے زمرے میں آتی. مثلا اب یہاں آپ سمجھیے گا, کوئی شخص کھانا کھائے پیئے, مقصد کیا ہے؟ طاقت ملے گی, اس طاقت سے کچھ عبادت کروں گا, کچھ دین کے کام کروں گا, تو یہ کھانا اس کے لیے ثواب ہو جائے گا. اسی طرح شادی کرتا ہے, بیوی سے بات چیت ہوگی, کمپینین شپ ہوگی, ہنسی مذاق ہوگا, دل کو سکون ملے گا, تو یہ شادی کیا ہوئی؟ عبادت بن گئی. اسی طرح سے یہ عمل مباحات کی فہرست سے نکل کر اطاعت اور عبادت بن جاتے ہیں. یہی تمہارے اسلام کا حسن ہے کہ اسلام میں عبادت بن جاتے ہیں عام کام, جب اس کو ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کرتے تھے. اور ان کو پرہیزداری کے طور پہ چھوڑ دینا کوئی فائدہ نہیں, بیکار ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ کوئی شادی نہ کرے اور کہے میں متور ہوں تو جھوٹ ہے. کوئی کھائے نہ, پیئے نہ, اچھے کپڑے نہ پہنے, نہیں, کر کے شکر کریں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ واقعی ہمیں وہ درجے عطا کرے کہ جس کو کوئی کونکر ہی نہ کر سکے.